कितने प्रभु का मिला सहारा, हम खुश नसीब कितने प्रभु का मिला सहारा, हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा, हम खुश नसीब कितने प्रभु का मिला सहारा, हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा, हम खुश नसीब कितने प्रभु का मिला सहारा।
ओम शांति। हजारों वर्ष पहले एक बार नरक में संकट का माहौल उत्पन्न हो गया। अचानक से मनुष्य नेक हो गया, अचानक से सब सत्कर्म करने लगे और नरक में आने वालों की संख्या कम होने लगी। ऐसी आपत्कालीन स्थिति में स्वर्ग के राजा शैतान बहुत ही चिंतित हुए। एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई, क्या किया जाए, मनुष्य इतने अच्छे कर्म कर रहा है कि अब नरक में कोई आ नहीं रहा है। इस आपात समय में एक मीटिंग बुलाई गई और शैतान ने अपने प्रमुख मंत्रियों से पूछा क्या किया जाए। एक मंत्री सामने आया और उसने कहा कि मैं अभी अभी धरती लोक पर जाता हूं और वहां सभी को समझा देता हूं कि भगवान नहीं है, ईश्वर नहीं है, स्वर्ग नर्क कुछ नहीं होता है, तो शायद लोग फिर से पाप कर्म करना चालू कर देंगे। तो शैतान ने कहा इससे कुछ होने वाला नहीं है, यही तो हम कर रहे हैं कब से, ये कोई नई ट्रिक नहीं है, इससे ज्यादा लोग नर्क में आने वाले नहीं है अगर उन्हें यह समझा दिया जाए कि भगवान नहीं है, स्वर्ग नहीं है, सत्कर्म सुकर्म ऐसा कुछ होता नहीं है। एक दूसरा मंत्री सामने आता है, वो कहता है कि मुझे मौका दिया जाए, मैं अभी अभी धरती लोक पर जाता हूं और सभी मनुष्य मात्र को यह समझा देता हूं कि नर्क कुछ नहीं होता है, शैतान वगैरह कुछ नहीं है, क्योंकि सभी धर्म जो है वो डर पर खड़े हुए हैं। यदि उन्हें यह समझा दिया जाए कि नर्क कुछ नहीं होता है, शैतान कुछ नहीं होता है, तो शायद वो बिना डरे पाप कर्म करने लगे। शैतान ने कहा पहला जो सुझाव था इससे यह थोड़ा सा बेहतर है, पर इससे भी कुछ नहीं होने वाला, लोगों के मन में स्वर्ग जाने की इतनी कामना भरी पड़ी है कि वो भल नर्क से न भी डरे और शैतान से न भी डरे तो भी स्वर्ग जाने की कामना से भर जाएंगे। तो ये सुझाव कोई इतना अच्छा नहीं है, परंतु पहले से थोड़ा बेहतर है। तीसरा मंत्री सामने आता है और वो कहता है मेरे पास सबसे अच्छा एक सुझाव है, और वाकई में वो सुझाव का जब पालन हुआ तो नर्क में भीड़ लग गई लोगों की। आप सबसे प्रश्न है वो सुझाव कौन सा होगा। पहले ने कहा था भगवान है ही नहीं, ये समझाऊं तो शैतान ने कहा ये हम सदियों से समझा रहे हैं। दूसरा सुझाव था नर्क नहीं है, शैतान नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है, तो मनुष्य भय के वजह से ही तो अच्छे कर्म करता है, तो तीसरा सुझाव कौन सा होगा। वो नर्क में खजाने मिल रहे नहीं, प्रश्न है कि ऐसा सुझाव कि जिसके बाद नर्क के ऊपर जो संकट की घड़ी आ गई थी, डेंजर, अचानक लोगों का आना बंद हो गया था, वो बढ़ गया कैसे। पहले दो सुझाव अच्छे से समझ लो, उनमें सारे प्रश्नों के उत्तर तो आ चुके हैं आपके। नहीं, हम सुझाव पूछ रहे, कहानी ठीक से समझो। क्या नहीं है स्वर्ग, वो दूसरा उत्तर तो वही था, स्वर्ग नहीं है, शैतान, पहला उत्तर वही था, भगवान नहीं है, कोई स्वर्ग नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है, भगवान है ही नहीं, ये पहला उत्तर था, तो डरने की तो बात नहीं, ये था। तीसरे मंत्री ने क्या सुझाव दिया होगा, खाओ की पियो और मौज करो। कई धर्मों में बांट दो, हाँ ये थोड़ा तगड़ा सुझाव है, कई धर्मों में बांट दो। कहानी में तो है डिवाइड एंड रूल, स्वर्ग का रास्ता नरक से जाता है। तीसरा मंत्री सुझाव देता है कि मैं अभी अभी जाता हूं धरती लोक पर और सभी मनुष्य मात्र को समझा देता हूं भगवान है, स्वर्ग है, सत्कर्म का महत्व है, शैतान भी है, नरक भी है, कयामत का दिन भी है, परंतु अभी जल्दी क्या है, टाइम बहुत है। बस इतना सुझाव आज की अव्यक्त मुरली सुबह की। सभी ने सुनी? किस किस ने सुनी हाथ खड़ा करो, क्योंकि आपके यहां मधुबन में जो सुनाया जाता है वो एक हफ्ते हर गुरुवार को पहले ही सुनाया जाता है, संडे को यहां साकार मुरली होती है, परंतु इस बार आज जो अव्यक्त वाणी संडे को सुनाई जाती है, आप लोग मेरे ख्याल से 81 की मुरलियां पढ़ रहे हैं, परंतु मधुबन में बाबा के आने से तुरंत पहले 99 की मुरली चलती है और बाकी दिन बाकी संडे 81 की मुरली चलती है। इसके लिए आज सुबह भी यहां पर जो मधुबन में सुनाया जाता है वो सुनाया गया। आज की अव्यक्त वाणी सुबह की, बाबा ने कहा कौन तुम्हारा टीचर है, परमात्मा या समय? तुम कौन हो? मास्टर रचता हो, समय तुम्हारी रचना है, कौन किसका इंतजार करे? तुम समय का इंतजार करो या समय तुम्हारा इंतजार करे? समय हमारा इंतजार करे। कोई एक अव्यक्त वाणी है जिसमें बाबा ने कहा है तुम हो मास्टर रचता, समय है तुम्हारी रचना, तुम्हारी रचना आगे है और तुम पीछे हो, और समय आगे बढ़ते हुए पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा है और क्या कह रहा है, हे मेरे मालिक कहां तक पहुंचे हो? ये बाबा के अव्यक्त महावाक्य है जिसमें समय आगे दौड़ रहा है, हम पीछे हैं, और वो कह रहा है हे मेरे मालिक कहां तक पहुंचे हो? समय हमारा शिक्षक न बने, समय बहुत कम है, लंबे समय का पुरुषार्थ, लंबे समय का वर्षे के अधिकारी बनाएगा, एक दो दिन का पुरुषार्थ नहीं, एक दो हफ्ते का पुरुषार्थ नहीं, एक दो मास का पुरुषार्थ नहीं, एक दो साल का भी नहीं, लंबे समय अनब्रोकन, ऐसा अखंड पुरुषार्थ चाहिए, क्योंकि समय बहुत कम है, समय ने अपनी करवट बदली है, कल क्या होगा कब क्या होगा कुछ पता नहीं। जैसे उस दिन भी सुना रहे थे, लक्ष्मी ने अपना रूप बदला है परंतु स्वभाव नहीं, स्वभाव उसका वही है, अब भी मनुष्य को वैसा ही अपने पीछे दौड़ाती है। तो समय को समझना। तो आज की मुरली की शुरुआत करते हैं, वहां मधुबन में हम हर संडे जो मुरली चलती है और वहां जो तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप है उसमें मुरली से प्रश्न निकाले जाते हैं और उन पर चर्चा की जाती है। जैसे कल भी कहा था चिंतन, ज्ञान के चिंतन से क्या होती है, आत्मा शक्तिशाली बनती है, और आत्मा को शक्तिशाली बनाने की एक विधि कौन सी है, ज्ञान का मनन और चिंतन। जब तक ज्ञान का चिंतन नहीं किया जाता आत्मा में बल नहीं भरता, केवल सुन लेना, केवल नोट्स बना लेना, केवल अच्छा अच्छा कहना, इससे शक्तिशाली नहीं बनती आत्मा। चिंतन क्यों करना है उसकी भी हमने बहुत सारे कारण कल देखे थे, ज्ञान का स्पष्टीकरण, धारणाएं, डीप अंडरस्टैंडिंग, ये सारी चीजें चिंतन से ही होती है। तो आज की मुरली में क्या कहा बाबा ने, जिस जिसको जो जो पॉइंट याद है पहले वो बताइए, फिर अपनी मुरली हम यहां से चालू करेंगे। पास विद ऑनर होना है तो क्या करना है, सर्व खजानों को जमा करना है, एक और क्या करना है, क्या थोड़े में राजी होना है, थोड़े में राजी नहीं होना है, अच्छा, और संपन्न बनना है, और तीन बिंदी लगानी है, और क्या करना है, हाईएस्ट और रिचेस्ट हो, और आज की मुरली में बोला बाबा ने ये, अच्छा, और व्यर्थ नहीं गवाना है, तो व्यर्थ से सुनकर निकाल देना है, और एक एक खजाने में कितना जमा किया है उसके ऊपर ध्यान रखना है। क्या कहा, निर्बंधन होना है, एक बाप के सिवा और किसी को याद नहीं करना है। देह तो क्या, देह को याद करते ही देह के पीछे देह के संबंध, वस्तु पदार्थ एक के पीछे एक सब आ जाते हैं। इसके लिए क्या वरदान लेना है बाप से, मैं निर्बंधन आत्मा हूं, सारी दुनिया को माया के जाल से मुक्त करना है, छुड़ाना है, ये तुम्हारा कर्तव्य है। चेक करो कि कहीं पर भी कोई भी रग जुटी हुई तो नहीं है। और क्या कहा, कितने खजाने जमा किए है, सब बोझ बाप को दे दो, सब बोझ बाप को दे दो। बाबा ने कहा कौन से योगी हो, मुश्किल हो योगी हो या सहज योगी हो, क्यों नहीं देते बाप को बोझ, क्योंकि उत्तर भी बताया बाबा ने, आदत, आदत से मजबूर है, सारे बोझ खुद लेके चल रहे हैं और चिल्लाते हैं कि बोझ से मुक्त करो मुक्त करो मुक्त करो, परंतु आदत ऐसी पड़ी हुई है, परंतु लेते नहीं है। और बाप सबसे हल्की वस्तु है इस संसार की, बाइबल में एक जगह लिखा है, माय योक इज माइल्ड कैरी मी, मेरा वजन मेरा भार बहुत कम है, मुझे अपने साथ ले चलो। एक सन्यासी कभी हिमालय की यात्रा कर रहा था, थक गया, पसीने से तरबतर, कड़ी धूप, सूरज की गर्मी, प्यास, थकान, भूख, और हिमालय पर चढ़ रहा है। उसके पास थोड़ा वजन है, थोड़ी उसकी किताबें और कुछ वस्त्र, परंतु उसे बहुत भारी लग रहे, क्योंकि कब से चल रहा है, दोपहर हो गई, सुबह से चल पड़ा था। देखता है चढ़ते चढ़ते एक पहाड़ी लड़की उसी पहाड़ पर चढ़ रही है और इतनी खुश है। उसके हाथ में उसका छोटा भाई है जो कि मोटा ताजा है। वो सन्यासी उस लड़की से पूछता है, ए लड़की क्या तुम थकी नहीं हो, मैं तो थक गया हूं, मेरे साथ ही तुम निकली थी, क्या तुम थकी नहीं हो। वो पूछता है कि क्या तुम्हें भार नहीं हो रहा है, इतना बड़ा बोझा तुम अपने साथ लेके चल रही हो तुम्हारा भाई। तो वो कहती है, बोझ कैसा है, ये मेरा छोटा भाई है, ये मेरा छोटा भाई है, इसका बोझ कैसा। वो सन्यासी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि ऐसा वाक्य मैंने आज तक कहीं नहीं पढ़ा, इतने उपनिषद पढ़े, वेद पुराण पढ़े, कि छोटे भाई का वजन नहीं होता। क्यों वजन नहीं होता, क्योंकि जहां प्रेम है, जहां प्रेम है वहां बोझ कैसा। वो लिखता है इतने मंत्र पढ़े पर करण कहीं ऐसा वाक्य कहीं नहीं आया। वो पहाड़ी लड़की उसकी उसका जैसे शिक्षक बन गई। जिससे प्यार है क्या उसका बोझ होता है? यदि बोझ है और महसूस हो रहा है तो क्या कहेंगे? शायद है पर थोड़ा कम है। तो जिन जिन का प्यार बाबा से कम है वो हाथ खड़ा करो अभी। अच्छा, जिन जिन को लगता है कि हमारे पास बहुत बोझ है, गृहस्थी का बोझ, बच्चों का बोझ, बच्चों की पढ़ाई का बोझ, समस्याओं का बोझ, वो हाथ खड़े करो। अरे वो भी नहीं सभी निर्बोध अवस्था में हैं। नेक्स्ट पॉइंट, और क्या सुनाया बाबा ने आज? कर्म और संकल्प और कर्म, प्लान और प्रैक्टिकल समान हो। और कहाँ? आज की मुरली में साकार नहीं, अव्यक्त वाणी आज की। और आत्म अभिमानी स्थिति में रहोगे तो तन और मन की हलचल समाप्त हो, अचल बन जाएंगे। और जमा का खाता बाप ने चेकिंग की है, बाबा के पास ऑटोमेटिक क्या है, टीवी है जिसमें बच्चों की बहुत सारी फाइल्स है। जब बाबा को लगता है तब बाबा उसको खोल कर देखते हैं। एक मुरली में बाबा ने अभी अभी कहा था, जब बाप को टाइम मिलता है तब बच्चों को याद कर लेते हैं। भगवान कह रहा है। और हाँ, आपस में भी तुम क्या बात करते हो वो भी बाबा ऊपर सुन लेते हैं। इसके लिए खबरदार, हम आपस में क्या बात करते हैं। आज फिर से उठना है अमृत वेला, ओहो फिर से इतना दूर मुरली में भी जाना है, मुरली याद भी रखनी है, थोड़ी सेवा भी करनी है, थोड़ी थोड़ी बातें आपस में, ज्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी, कभी कभी। बाबा कहते हैं मैं सब कुछ सुन लेता हूं। पग बिनु चलई सुनई बिनु काना, भगवान पग बिनु चलई सुनई बिनु काना, ऐसा वो है। ही दैट प्लांटेड द ईयर शैल ही नॉट हियर, ही दैट प्लांटेड द आई शैल ही नॉट सी, जिसने आंख दी है क्या वो नहीं देखेगा, जिसने कान दिया है क्या वो नहीं सुनेगा? क्या ऐसा कुछ है जो वो नहीं जानता है? फिर भी हम जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर उसे बताते हैं हमारे जीवन में ये है समस्या, वो है समस्या, क्या उसे पता नहीं है? मुरलियों में तो बाबा कहते हैं मैं जानी जाननहार नहीं हूं, परंतु वही बाप कभी मुरलियों में उसने बहुत बार कहा है मैं निराकार सब कुछ जानता हूं। क्या वो नहीं जानेगा? हमने जन जन क्या किया है सब वो जानता है। इतनी बड़ी सभा में आकर वो बैठता है, ऐसे दिखाता है जैसे उसे कुछ पता नहीं, जबकि उसके अतिरिक्त और किसी को कुछ पता नहीं। हम हमारे जन्म को नहीं जानते, हमने जीवन भर में क्या किया है, पूर्व जन्म में क्या किया है, वो त्रिकाल का ज्ञान उसके पास है, परंतु बैठता ऐसा है जैसे कुछ उसे पता ही नहीं। ऐसा भोलानाथ, भोलानाथ भूला भूल चुका है सब कुछ, ऐसा वो बैठता है, जबकि पता उसे सब कुछ है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो हमारे जीवन के बारे में नहीं जानता है, परंतु दिखाता है ऐसे कि कुछ उसे पता नहीं है, लीलाएं करता है। जाके सहज श्वास श्रुतिचारी ते प्रभु पड़ी यह कौतुक भारी। रामायण में लिखा है श्री राम पढ़ाई कर रहे हैं, वेदों का अध्ययन कर रहे हैं, बचपन में वेदों का अध्ययन कर रहे हैं। तुलसीदास लिखते हैं, देखो कैसी लीला है, जाके सहज श्वास श्रुतिचारी, चार वेद जिसका सहज श्वास है, ते प्रभु पढ़ी यह कौतुक भारी। कितना आश्चर्य है कि भगवान पढ़ाई कर रहा है, भगवान लीलाएं करता है, भगवान के हर कर्म को लीला कहा जाता है। लीला पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम, तो वो सब कुछ जानता है। तो कौन सी पॉइंट थी मुरली में, बाबा के पास टीवी है, अलौकिक टीवी, जिसमें बच्चों की जितनी फाइल्स है वायदे की सारी है वहां पर। और बाबा आपस में तुम जो बात करते हो वो भी सुन लेता है। इसके लिए ये मत समझना कि वो सुन नहीं रहा है, हमारे मुख से निकला हुआ एक एक शब्द वो सुन लेता है। और कौन सी पॉइंट थी मुरली में, समय का महत्व मर्ज हो जाता है। कितनी अच्छी बात बाबा ने कही, ऐसे नहीं कि तुम्हें पता नहीं है, अगर एक घंटे भी संगम युग की महिमा करने को कहो तो बोल सकते हो, लिख सकते हो। बाप ये नहीं कहते कि तुम्हें पता नहीं है, पता तो है, तब तो सुनाते हो दुनिया वालों को, परंतु क्या हो जाता है, मर्ज हो जाता है। ये खेल है मर्ज और इमर्ज का, ये खेल है स्मृति और विस्मृति का। इसके लिए सदा इमर्ज रूप में यह ईश्वरीय नशा रहे, मैं कौन, यह रूहानी नशा रहे, मैं कौन। और क्या कहा, ब्राह्मण जीवन मौजों का जीवन है, ये संगम युग मौजों का युग है, बोझ उतारने का युग है। क्या है, बोझ उतारने का युग है, बोझ खत्म करने का युग है, बोझ ढोने का युग नहीं है। वो तो जन जन्म भक्ति में किया, अब वो आया है, कहता है तुम्हारे सारे बोझ मुझे दे दो। एक मुरली में बाबा ने कहा है, बाप को यूज करो, क्या करो, यूज करो मुझे, मैं बैठा हूं क्या करूं बताओ तुम्हारे लिए, जो तुम कहोगे। कितनी बार मुरलियों में आता है, बाप तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट है। और माताओं के लिए तो बाबा कितनी बातें कहता है, दुनिया ने जैसे ठुकरा दिया, बाप ने उन्हें क्या कहा, ठाकुर। ज्ञान का कलश ही माताओं के सिर पर रख दिया बाबा ने आकर। तो ये थी मुरली की कुछ पॉइंट्स, अभी थोड़ी गहराई से इन पॉइंट्स की चर्चा करते हैं। तो बाबा ने कहा आज की मुरली में, तुम सब कौन हो, हाईएस्ट और रिचेस्ट इन द वर्ल्ड हो। दुनिया में भी साहूकार लोग हैं, पर तुम रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, क्या रिचेस्ट इन द कल्पा, प्योरेस्ट रिचेस्ट हाईएस्ट होलीएस्ट तुम हो। वो जो है वो एक जन के लिए हो सकते, वो भी निश्चित नहीं है, पर तुम जन जन के लिए हो। उनके पास जो खजाने हैं वो विनाशी खजाने हैं, तुम्हारे पास जो खजाने हैं वो अविनाशी खजाने हैं। उनके खजाने एक जन के लिए भी नहीं टिकते, तुम्हारे अनेक जन्मों के लिए टिकते हैं। वहां निश्चितता नहीं है, तुम निश्चय और नशा से कहते हो कि ऐसे खजाने हमारे पास है। एक दिन में तुम कितनी कमाई करते हो, नेक्स्ट पॉइंट बाबा ने कहा, एक दिन में तुम कितनी कमाई करते हो, जितने कदम पर, कैसे हो कदम, वो याद में ज्ञान के कदम, ऐसे ही नहीं, जितने कदम हम बढ़ाएंगे उतनी कमाई होती है। एक दिन में कितने कदम, जितने कदम उतने पदम, तो क्या हमारे हर कदम बाप की याद में है, पूछना है स्वयं स्वयं को। सिंहावलोकन, स्वयं स्वयं को देखना है, इंट्रोस्पेक्शन करना है, रेट्रोस्पेक्शन करना है कि हम किस ओर भाग रहे हैं, दो मार्ग है, एक संसार का मार्ग और एक भगवान का मार्ग। भगवान को पा लिया, भगवान मिल गया, उसके बाद भी उस ओर दौड़ना, क्या कहेंगे इसे? जन जन्म से तो उसे पुकारा था कि तुम आ जाओ, अब वो आया है। उसके आने के बाद भी अब तक संसार की तृष्णाएं और संसार की इच्छाएं समाप्त नहीं हुई है। कैसी ये भूख और कैसी ये प्यास है। अब समय है सारे खजाने जमा करने का, फिर भी हम कुछ और करने में लगे हुए हैं। उस खजाने और इस खजाने में क्या अंतर है? हमारे पास अविनाशी खजाने हैं, उधर विनाशी खजाने हैं। प्रश्न है आप सबसे, हमारे जो खजाने हैं अविनाशी और जो विनाशी खजाने, इन दो खजानों में क्या अंतर है? खुशी नहीं है तो लोग क्यों उसके पीछे है फिर? अल्पकाल की खुशी है, चलो अल्पकाल की खुशी है। और यहां से लिया, यहीं खत्म। और अभी बीच में न्यूज़पेपर में एक न्यूज आई थी जिसमें बेटे ने और मां ने मिलकर बाप को मार दिया पैसों के लिए। बेटे ने और मां ने मिलकर बाप को मार दिया। खजाना जो है वो जो पैसे हैं वो है बैंक में, और मां बेटे हैं जेल में। लो खजाना वहीं के वहीं है। ये वो खजाना, अविनाशी खजाना बांटो तो बढ़ता है, वो खजाना बांटो तो घटता है। और अविनाशी खजाना साथ चलता है, अनेक जन्म तक चलता है, विनाशी खजाना यहीं खत्म होता है। और क्या बात है, वाह! विनाशी खजाना माया का ही रूप है। वो खजाना सरकार के एक फैसले से हिल गया। कितनी सुंदर पॉइंट है। और ये खजाना स्वयं अविनाशी पांडव गवर्नमेंट की स्टैंप है इस खजाने पर। अविनाशी खजाना है, इम्पेरिशेबल, कभी नाश नहीं हो सकता, ऐसा ये खजाना है। अविनाशी खजाने पर बेहद के बापूजी की मोहर है, और विनाशी खजाने पर हद के बापूजी की मोहर है। और अविनाशी खजाने को कोई जला नहीं सकता, वो खजाना किसी की दबी रही धूल में और किसी की राजा का है। तो वो खजाना नश्वर है, अनित्य है, आज है कल नहीं है, उसमें भय है। उसमें क्या है? भय है, डर है, कहीं खो ना जाए। इस खजाने में कोई डर नहीं है। अगर इस खजाने को कोई चोर लेके चला गया तो वो भी मालामाल हो जाएगा। अगर इस खजाने को कोई लेके चला जाए हमारे अंदर से, चोरी कर ले, डाका डाल दे, तो क्या हो जाएगा? वो भी मालामाल हो जाएगा। और वो खजाना तो डर है, उसमें बहुत ज्यादा डर है। वो लालच पैदा करता है, ये आनंद पैदा करता है। वाह, कितनी अच्छी पॉइंट है। ये खजाने संस्कार भी बदल देते हैं। विनाशी संस्कार तो और माया में फंसाते हैं, घसीटते हैं, लटकाते हैं, फंसाते हैं। और माया बकरी बना देती है। मेरा मेरा, मैं। अविनाशी खजाने स्थूल खजाने को भी लेकर आते हैं। ये बहुत सूक्ष्म पॉइंट है। बाबा ने कहा है, जिसके पास ज्ञान के खजाने यहां जितने ज्यादा है, वहां स्थूल खजाने उतने ज्यादा होंगे। अभी जितने ज्ञान हम अपना बढ़ाएंगे और ज्ञान के खजाने से स्वयं को संपन्न करेंगे, द्वापर से भी कमाई करने के लिए ज्यादा भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी। जन्म ही ऐसे घर में होगा वहां सब कुछ मिलेगा। और यहां अगर खजाने कम है ज्ञान का, तो वहां फिर मांगते रहना पड़ेगा। भटकते रहना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, फिर भी नहीं मिलेगा। ऐसा ये ज्ञान का खजाना है। तो बाबा ने कहा तुम रिचेस्ट इन द वर्ल्ड हो, तुम हाईएस्ट इन द वर्ल्ड हो, तुम्हारे पास अविनाशी खजाने, तुम्हारे खजाने हैं, वो तुम्हें निश्चय और नशा है कि हमें ये परमात्मा द्वारा प्राप्त हुआ है, परमात्मा द्वारा हमारा भाग्य बना है। संसार के जो खजाने हैं विनाशी खजाने हैं, एक जन्म के है, उसमें भी निश्चिंतता नहीं है, उसमें भय है, डर है। रूपे जराय भयम्, रूपवान कोई है उसको बुढ़ापे का डर। वृत्त नुपालत भयम्, जो राजा होता है उसके पास बहुत धन होता है, उसे पुराना लिखा हुआ है इनकम टैक्स का भय होता है। भोगे रोग भयम्, भोग विलास करो तो रोग का भय। हर वस्तु भयान्वित, इस संसार की हर वस्तु में भय 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 भरा हुआ है। कौन कौन से खजाने हैं हमारे? अब दूसरा प्रश्न है, नौ खजानों की का गायन है नवनिधि, कल या परसों भी सुनाया था ना, नौ खजाने, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। तो ऐसी अष्ट सिद्धियां और नव निधि है, ज्ञान गुण शक्तियां, समय या श्वास, संकल्प खुशी, पवित्रता, दुआएं, पुण्य कर्म। कितने खजाने हैं ये? नौ खजाने हैं। बाबा ने उसमें से आज पांच खजाने गिनाए, समय संकल्प ज्ञान गुण शक्तियां, और उन पांच में से दो का विस्तार किया, समय का और संकल्प का। एक बात और कही कि बाबा ने सबको समान खजाने दिए हैं और सर्व दिए हैं, समान भी दिए और सर्व खजाने दिए हैं, उसके बाद भी नंबरवार है। ऐसा नहीं बाबा ने किसी को एक गुना, किसी को दस गुना, किसी को सौ गुना दिया, सबको समान खजाने दिए हैं, परंतु धारण करने वालों ने अपने अपने हिसाब से धारण किए। तो बाबा ने आज चेक किया कि बाप ने जो खजाने दिए हैं वो कितने धारण किए, सारे दिन भर में कितना जमा करते हो, कितना गवाते हो। बाबा ने कहा एक घंटे में चेक करो समय और संकल्प कितना गवाया है। फिर बाबा ने विस्तार किया समय का और संकल्प का। हमारा समय बहुत बहुत अमूल्य है, क्या ऐसा लगता है सभी को? बहुत बड़ा खजाना समय, बहुत बड़ा खजाना संकल्प, बाकी तो है ही, परंतु ये दो मुख्य खजाने हैं। एक घंटे में बाबा ने कहा ऐसे नहीं कि समय तुम संकल्प बहुत विकार के संकल्प तो नहीं है, परंतु संकल्प ऐसे ही फालतू चले जा रहे हैं, वेस्ट हो रहे हैं। तुम जितना समझते हो तुम्हारा जमा है, बाप के खाते में उतना जमा नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं हमारा जो अच्छा अच्छा है वो जमा है, पर हमारे जो व्यर्थ चल रहा है दिन भर उसका क्या, वो हम नहीं देख रहे हैं। ब्राह्मण आत्माओं का समय कहां वेस्ट होता है? दूसरा प्रश्न आप सबसे, अब ब्राह्मण आत्माओं का टाइम जो है कहां वेस्ट हो रहा है? एक तो व्यर्थ में, व्यर्थ कहने से नहीं होगा, थोड़ा विस्तार से बताओ, पर चिंतन में, दूसरे ने क्या किया, कौन क्या कर रहा है, किसके घर में क्या हो रहा है, हमें क्या करना है, ये समय कौन सा है? हम दूसरों को ही देखते रहेंगे तो स्वयं को कब देखेंगे? एक तो दूसरों का दर्शन करने में, दूसरों का चिंतन करने में, बाबा ने कभी स्लोगन में कहा था पर दर्शन और पर चिंतन है धूल, तुम्हें बेदाग हीरा बनना है। और ब्राह्मण, रुको अभी भाइयों की तरफ से, माताएं शांत, विकार में, व्यर्थ बोलचाल में, और ब्राह्मणों का समय, हम संसार की आत्माओं का समय नहीं पूछ रहे, हम उन ब्राह्मणों का समय पूछ रहे हैं जिन्होंने बाप को जान लिया, जो अमृत वेला रेगुलर करते हैं, रोज मुरली सुनते हैं, सेवाएं करते हैं, जो धारणा युक्त है, ऐसी आत्माओं का समय कहां वेस्ट होता है? कहां पे? व्यर्थ बता दिया और बाबा को याद नहीं करते तब, पर कहां, वही प्रश्न है। युद्ध किसके साथ? युद्ध अपने आप के साथ, युद्ध अपने आप के साथ, युद्ध। एक द्वंद चालू है अंदर ही अंदर। और मोबाइल, हम ऐसे उत्तर चाहते हैं, स्थूल उत्तर। कहां जा रहा है समय? मोबाइल, टीवी, इंटरनेट। एक व्यक्ति था जिसको रात में एक स्वप्न दिखता था रोज। उसको यह दिखता था उसकी खटिया के नीचे बहुत सारे राक्षस है। डॉक्टरों के पास गया, साइकेट्रिस्ट के पास गया, साइकोलॉजिस्ट के पास गया, कुछ दवाई बताओ कि जैसे ही सोता हूं रात में स्वप्न में दिखता है राक्षस ही राक्षस है खटिया के नीचे। कितनों ने कई सारी दवाई दी, किसी का ठीक नहीं, कभी कोई वो ठीक हुआ ही नहीं स्वप्न। अचानक एक दिन उसका दूर का कोई एक भाई आ गया, रात में सोया और सुबह उठा तो इतना खुशी से और आनंद से झूमता हुआ निकल रहा था। आसपास के लोगों ने पूछा, रोज तो तुम उठते हो तो बड़े दुखी होते हो, रोज जब हम तुमको देखते हैं अपने कमरे से निकलते हुए बड़े ही दुखी नजर आते हो, चेहरे पर कोई खुशी नहीं होती है। वो कहता है कि मेरी जो समस्या थी उसका हल मिल गया। वो कहते हैं कि क्या वो स्वप्न आना बंद हो गया, कौन सी दवाई खाई? वो कहता है दवाई तो इतने सालों से खा रहा था पर ठीक नहीं हुआ। क्या हुआ होगा? वो कहता है मेरा भाई कारपेंटर है, उसने खटिया के चार टांगी काट दिए। तो स्वप्न आना ही बंद हो गया। टीवी, मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया, ये टांग है खटिया के, एक दो तीन चार, इसके नीचे ही सारे राक्षस है, सारे भूत प्रेत डायन सब इसी के नीचे है। अगर इनको काट दिया जाए ना रहेगी बास और ना बजेगी बासुरी। जितना जरूरत है उतना ही उसका उपयोग करना। आज सारे विश्व में, सारे संसार भर में जिसको देखो वो मोबाइल। एक समय था ये सब कुछ नहीं था, तब भी तो सब चल रहा था कारोबार। जितना विकार की आंधी संसार में चल रही है, किस वजह से चल रही है? यही मोबाइल, यही इंटरनेट, यही टीवी। आवश्यक है, सेवा में भी बहुत आवश्यक है, परंतु एक है आवश्यकता, उसका उचित प्रयोग करना, दूसरा है उसी में डूब जाना, दिन रात उसी के बारे में सोचना, उसी में डूब जाना, दिन रात मैसेजेस, दिन रात कुछ तो कुछ तो कुछ, कितना टाइम जा रहा है। तो ब्राह्मणों का टाइम भी इसमें जा रहा है। हम चेक करें कि हम इन साधनों को कितना प्रयोग कर रहे हैं। टू मच में नहीं जाना है। पिछले सीजन की मुरली बाबा की साधनों के विषय में, साइंस वालों की बाबा ने कहा था, वाह साइंस वाले वाह, पर उसमें भी कहा था कि टू मच में नहीं जाना इन सब बातों में। सेवा के लिए प्रयोग यूज किया बस, उसके ऊपर निर्भर नहीं हो जाना है। वो है तो ही सेवा होगी, ऐसा नहीं। ये साधन कब तक? साधन सब फेल हो जाएंगे। एक दिन ये मोबाइल एक डिब्बा रह जाएगा बस, और कुछ नहीं। और कहां वेस्ट होता है ब्राह्मणों का समय? ब्राह्मणों का समय माताओं की तरफ से अच्छा अच्छा खाना तो बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? अच्छा सादा खाना खाना चाहिए। और शॉपिंग, ये खरीदू वो खरीदू, इधर जाऊं उधर जाऊं, ये देखू वो देखू, याऊं करूं त्याऊं करूं। और किसमें जाता है? ब्यूटी पार्लर। बाबा ने यहां आकर सुप्रीम ब्यूटी पार्लर खोला है। मधुबन का एक नाम ब्यूटी पार्लर भी है, ये सेंटर भी एक ब्यूटी पार्लर है। यहां ज्ञान का श्रृंगार होता है। वो तो ब्यूटी पार्लर स्थूल श्रृंगार है, विनाशी श्रृंगार है। सच्चा श्रृंगार तो आत्मा का श्रृंगार यहां होता है, आत्मा यहां सुंदर बनाई जाती है, यह बेहद का ब्यूटी पार्लर है। तो बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिस पर और भी चिंतन किया जा सकता है, परंतु हम स्वयं को देखें कि मेरा समय कहां वेस्ट हो रहा है। सुबह से लेके तो रात तक, बाबा ने तो एक घंटे की चेकिंग करने को कहा है, हम देखें 24 घंटे में मेरा समय कहां कहां जा रहा है। दो तीन माताएं मिलकर बैठ जाए तो सारी रात भी चली जा सकती है, इतनी बातें उनके पास है। कहां से इतना माल आता है पता नहीं, बहुत रामायण महाभारत भी छोटे पड़ जाएंगे। इसने क्या किया, उसने, हमें क्या करना है, कौन क्या कर रहा है, जिसको जो करना है करने दो, हमें वही करना है जो बाबा ने कहा है, बस। हम दूसरों को दोषी नहीं बना सकते और दूसरे के जीवन में इंटरफियर और हस्तक्षेप करके हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। किसके घर में क्या हो रहा है, किसकी सास और किसकी ननद और किसकी बहू क्या कर रही है, और किसके घर में क्या बनाया जा रहा है, किसने कौन सी कार खरीदी और कौन से वस्त्र खरीदे, तुम अपने आप को देखो कितना टाइम इसमें जा रहा है। समय को चुराना है, क्या करना है, चुराना है, जहां जहां टाइम मिले, जहां जहां। कई लोग छोटी सी डायरी रखते हैं जिसमें मुरली की पॉइंट्स होती है, एक होता है बड़ी डायरी रखना, उससे भी अच्छा हमें लगता है छोटी डायरी रखे जो हमेशा जेब में हो, जब भी टाइम मिले देखो बाबा ने स्लोगन में क्या कहा, वरदान में क्या कहा, महावाक्य में क्या कहा, मुरली की पॉइंट्स को बार 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 रिवाइज करते रहना, कितना अच्छा चिंतन चलेगा। सारे दिन भर नहीं तो व्यर्थ का अंबार लगा हुआ है संसार में, तो कहीं पर भी बाहर जाओ और बैठ जाओ किसी के साथ और नोटों की चर्चा करो तो 4 घंटा ऐसे ही निकल जाएंगे, कौन गलत है, करना चाहिए था सरकार ने कि नहीं करना चाहिए था, उस चर्चा का कोई अंत नहीं है, अंतहीन चर्चाएं हैं। मौसम की चर्चा करने लगे कि गर्मी कितनी है, ठंडी कितनी है, तो समय चला जाएगा। राजनीति की चर्चा करने लगो तो अंतहीन है, पर हमें करना क्या है इस समय। बाबा ने क्या कहा, एक एक सेकंड तुम्हारा कितना वैल्यूबल है, एक वर्ष के बराबर है। टाइम वेस्ट नहीं करना है, और दूसरा है टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेज करना है। सबसे पहले तो 24 घंटे में हम क्या क्या करते हैं उसकी लिस्ट बनाओ, प्रायोरिटाइज द थिंग्स, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है जो करना है उसकी लिस्ट बनाओ, पहले सबसे ये इंपॉर्टेंट है, फिर ये इंपॉर्टेंट है, फिर ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। किसी एक लेखक ने लिखा है भगवान के बारे में, ही हु गिव्स टू गॉड सेकंड प्लेस इन लाइफ गिव्स हिम नो प्लेस, जो व्यक्ति भगवान को अपने जीवन में 2 नंबर पे रखता है वो भगवान को कहीं पर भी नहीं रखता है, उसको 1st नंबर पर रखा जाए, पहले नंबर पर। सबसे ज्यादा टाइम हमें उसके लिए देना है, उसके बाद फिर ये सारा संसार, उसको छोड़कर संसार के पीछे लग गए तो ना ये मिलेगा ना वो। सीक ही फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड एंड हिज राइटियसनेस एंड ऑल दीज थिंग्स शैल बी एडेड इनटू इट, पहले उसको ढूंढो, उसको पालो और संसार की ये सारी जो वस्तु है शैल बी एडेड इनटू इट, उसमें एड हो जाएगी। परंतु उसको छोड़ के, भगवान को छोड़ के संसार के पीछे अगर लग गए तो ना वो मिलेगा ना ही संसार। इसके लिए क्या करना है, सभी को आज ही प्लानिंग बनानी है कैसे हम अपने टाइम को मैनेज करें, कितना टाइम किस, कोई कोई चीजें है एकदम जरूरी है जो करना ही है नेसेसरी, कोई कोई चीजें अर्जेंट, उसकी लिस्ट बनाए। हर दिन का एक टाइम टेबल, सुबह सुबह मुरली क्लास हो गया उसके बाद में एक टाइम टेबल बनाए, आज मुझे क्या क्या करना है, एक लिस्ट बनाना प्लानिंग की कि आज इनसे मिलना है, ये काम करना है, बैंक जाना है या ऑफिस जाना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। अब इसमें देखो कि बाबा कहां है और कितना टाइम हम उसको दे रहे। बाबा ने कहा प्लान और कर्म, प्रैक्टिकल, संकल्प और कर्म, ये अंतर रह जाता है। मुरली तो सुनी बहुत अच्छी थी, परंतु कर वही रहे जो रोज कर रहे, उसमें कोई अंतर नहीं है, वो दिनचर्या वैसी ही है, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। 10 साल से मुरलियां चल रही है, मुरलियां सुन रहे हैं, परंतु उसका असर नहीं है कुछ। इसके लिए क्या करना है? टाइम मैनेजमेंट। तो एक तो बात की बाबा ने टाइम की, दूसरी बात की संकल्प की, ये उससे भी सूक्ष्म है। श्रेष्ठ संकल्प के लिए श्रेष्ठ चिंतन की आवश्यकता है, श्रेष्ठ संकल्प के लिए श्रेष्ठ अध्ययन की आवश्यकता है। पांडव भवन में टाइम टेबल लिखा हुआ है, ब्राह्मणों की दिनचर्या, या छोटी छोटी जो डायरिया होती है उसमें भी लिखा हुआ है। उसमें एक शब्द है बीच में, शायद 2:30 बजे के आसपास, कौन सा है? सेल्फ स्टडी, जिसको हिंदी में लिखा गया है स्वाध्याय। 2:30 बजे के आसपास का टाइम किस लिए लिखा है उस डायरी में, ब्राह्मणों की दिनचर्या में? स्वाध्याय अर्थात स्व पढ़ाई करना, सेल्फ स्टडी करना। मुरली सुन लिया वो काफी नहीं है, उसको आपको खुद पढ़ना होगा रोज। केवल सुना तो यहां से सुना और यहां से चली गई। जब तक हम खुद मुरली नहीं पढ़ते, खुद उसकी पॉइंट्स नहीं निकालते, और फिर ये नहीं देखते कि मेरे जीवन में अब इनमें से कौन सी पॉइंट्स मैं अप्लाई करूं, तब तक वो मुरली बल नहीं भरेगी। वो टाइम उसमें लिखा हुआ है स्वाध्याय, संस्कृत शब्द है, सेल्फ स्टडी। भक्ति में पाठ किया जाता है गीता का, एक बार नहीं पढ़ी जाती है, बार बार पढ़ते रहते हैं। रामायण का पाठ करते हैं घर में, अखंड पाठ। हम कितनी बार पढ़ते हैं मुरली? एक बार रोज कौन पढ़ता है वो हाथ खड़े करो। 2 बार कौन पढ़ते हैं रोज की मुरली वो हाथ खड़े करो। 3 बार कौन पढ़ते हैं? 4 बार कौन पढ़ते हैं? दादी जान की जब ज्ञान में आई तो उनकी उम्र लगभग 21 साल की थी, और जैसे ज्ञान में आई उनको सबसे पहले चिंता ये हुई कि मैं बहुत लेट आई हूं, सब मेरे से आगे है बाकी दादियां, मैं क्या करूं? बाबा के पास पहुंची और बाबा को कहा, बाबा मैं क्या करूं? बाबा ने कहा था 6 बार मुरली पढ़ो। तो दादी ने सोचा, बाबा कह रहे 6 बार मुरली पढ़े, अगर मैं 12 बार पढ़ू तो कितना वो प्यार होगा उस मुरली से। उतनी बार पढ़ने के लिए पूरी दिनचर्या बदलनी पड़ती है, पूरा टाइम कहां उसको फिट करे। हम तो सुन लिया और छोड़ दिया, पढ़ना तो बहुत दूर की बात हो जाती है कभी कभी। उतना करने के लिए दिनचर्या में आमूल परिवर्तन करना होगा, बहुत बड़ा परिवर्तन। कहां कैसे उसको फिट करे, कैसे टाइम निकाले और उसको रिवाइज कैसे करे, बुद्धि में कैसे रखे, ये सब सोचने की बात है। तो श्रेष्ठ संकल्प तभी चलेंगे जब श्रेष्ठ चिंतन होगा, श्रेष्ठ अध्ययन होगा, श्रेष्ठ चर्चा होगी। यदि हम 2 व्यक्ति आपस में मिलते हैं और यहां वहां की बातें करते हैं तो बुद्धि में क्या चलेगा, व्यर्थ ही चलेगा। इसके लिए समय और संकल्प। तो बाबा ने चेक किया, फिर बाद में पूछा क्या बनना चाहते हो। अगर आपसे पूछे कि लक्ष्मी नारायण बनना चाहते हो या राम सीता, तो सब कहेंगे लक्ष्मी नारायण, परंतु उसके लिए लंबे समय का पुरुषार्थ चाहिए, 1-2 दिन का नहीं। जैसे कहा, वो जो संसार की ओर हमारी दौड़ है उसको थोड़ा रोकना पड़ेगा, जो इच्छाएं हैं थोड़ी कम करनी पड़ेगी, जो लोभ है वो थोड़ा कम करना पड़ेगा, जो दौड़ है और भाग रहे हैं और भाग रहे वो थोड़ा कम करना पड़ेगा, जो मोह है बच्चों में, सब में, पति में, पत्नी में, संसार में, गृहस्थी में, इस मोह के चलते क्या हम अंतिम मंजिल तक पहुंच पाएंगे? शायद ये मोह ही सबसे बड़ी बाधा है। मोह सकल व्याधिन कर मूला। हमारी ये जो आसक्तियां हैं, जब तक हम इनसे मुक्त नहीं होते या थोड़ी उनको कम ना कर, थोड़ी भी कम कर दे तो पुरुषार्थ बढ़ जाएगा। जैसे सहज याद उन सब की आती है, क्या वैसी सहज याद उस एक बाप की आती है? नहीं। पहले तो स्वीकार करना पड़ेगा नहीं, उसके बाद फिर चिंतन होगा कि अब क्या करें। यदि कोई माने कि नहीं हमारा तो बहुत याद है, वो नहीं चलेगा। पहले तो ये पता करना होगा कि हम फंस चुके हैं, उसके बाद मार्ग निकलेगा कैसे छूटे। और फंसने के बाद भी हमारी गति ऐसी है कि हम छूटना नहीं चाहते। जैसे एक बार एक क्रांतिकारी था, एक फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता सेनानी, पहाड़ों के बीच किसी एक सराय में वो एक दिन गया और पहाड़ों पर उसने एक आवाज सुनी। आवाज में जोर जोर से आवाज आ रही थी, स्वतंत्रता स्वतंत्रता स्वतंत्रता, ऐसी करुण आवाज, मार्मिक आवाज थी वो। उसको लगा कौन है ये जो स्वतंत्रता के लिए पुकार रहा है, चिल्ला रहा है, क्योंकि वो खुद भी स्वतंत्रता सेनानी था, वो खुद भी कभी बंदी था और वो छूटा था, तो उसे पता था वो कितना दर्द होता है स्लेवरी में, दास्ता में। और उसके घोड़े पर वो जाते जाते उस आवाज का पीछा करते करते पहुंचता एक सराय के पास और उसे पता चलता है यहीं से वो आवाज आ रही है। अंदर जाके देखता है तो वहां एक तोता होता है। पता चलता है ये तोता पिंजरे में जो बंद है इसकी ये आवाज है। उसका हृदय करुणा से भर जाता है, सोचता है इस तोते को मैं मुक्त करके ही रहूंगा। परंतु वहां मालिक होता है, सोचता है रात में ये काम करूंगा। और रात जब होती है वो उठता है और वो पिंजरा खोलता है और तोते को कहता है कि निकलो बाहर, भागो। पर जैसे ही कहता है, तोता और जोर से वो क्या कहते हैं उसे, जो बार या सिचका, उसको और जोर से पकड़ता है। वो थोड़ी ना मानने वाला है, वो तो स्वतंत्रता सेनानी है। वो अपना हाथ अंदर डालता है, वो तोता उसको चोंच से मारता है, पर फिर भी इसने ठान ली होती है कि इसको मुक्त करके ही रहूंगा। उसको लेता है और उड़ा देता है और उड़ाने के बाद चैन, उसको इतना आनंद होता है कि मैंने किसी आत्मा को मुक्त कर दिया और चैन की नींद सोता है। और सुबह जब आंख खुलती है तो फिर वही आवाज, स्वतंत्रता स्वतंत्रता स्वतंत्रता। उसको लगता है शायद तोता किसी झाड़ पर बैठकर चिल्ला रहा है, पर देखता है तो तोता वापस पिंजरे में। कैसी विडंबना है ये कि हमने ही पकड़ के रखा है जोर से, हम ही छूटना नहीं चाहते। कोई छुड़ाने आए तो हम उसको काटेंगे मारेंगे परंतु छोड़ेंगे नहीं, और चिल्लाएंगे क्या, स्वतंत्रता स्वतंत्रता स्वतंत्रता, छुड़ाओ हे बाबा छुड़ाओ। अभी भी मुरली चली थी, छोड़ो तो छूटे, पंछियों का उदाहरण दिया था बाबा ने, उसमें खुद ही पकड़ के रखते और चिल्लाते बाबा हमको छुड़ाओ, उड़ाओ उड़ाओ छुड़ाओ छुड़ाओ। मुरली याद आई, वो एक झाड़ उधर है, कुछ पंछी इधर है, कुछ कंधे पर है पंछी, कुछ इर्द गिर्द घूम रहे हैं, कुछ पंछी वहां है क्या, कोई दूर से पुकार रहा है, आ जाओ आओ आओ छुड़ाओ छुड़ाओ बाबा बाबा। परंतु पकड़ा किसने, खुद ही पकड़ के रखे। हम भी ऐसे ही सब खुद ही पकड़ के रखे और फिर चिल्लाते रहते हैं हमको छुड़ाओ, पकड़ा तुमने है, कौन छुड़ाएगा, तुम्हें ही छूटना पड़ेगा। बंधन निर्माण किसने किए, तुमने किए, तुम ही छोड़ो। तो हमारे संकल्प श्रेष्ठ हो, महान हो, टाइम संकल्प। बाबा ने फिर बताया इसकी संकल्प, ये जो खजाने इसकी जमा करने की विधि क्या है, तीन बिंदुई, समान मैं आत्मा, बाप की याद दूसरी बिंदी, और तीसरी बिंदी फुल स्टॉप। इसके बजाय क्या लगा देते हैं, लंबी लाइन, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, आश्चर्य की बिंदी लगा देते हैं, प्रश्न सूचक बिंदी लगा लेते हैं या लंबी लाइन लगा लेते हैं। और ये लगाना अर्थात गवाना, बिंदी लगाना अर्थात जमा करना, बिंदी स्वरूप में स्थित हो, हर श्वास सफलता स्वरूप हो। अमृत वेले क्या करो, तिलक ले लो बाबा से। तीन बिंदियों में से एक बिंदी की हम चर्चा करेंगे और वो है फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। हरेक के जीवन में इतनी बातें हुई है पास्ट में अतीत में कि वो फुल स्टॉप लग ही नहीं रहा है, वही चल रहा है, चल ही रहा है, चल ही रहा है, चल ही रहा है, वही दर्द, वही पीड़ा, वही दुख, वही अवसाद, वही डिप्रेशन, वही व्यर्थ के संकल्प, वही पश्चाताप के संकल्प, बिंदी लगी नहीं रही है। क्या करे, जो अतीत की स्मृतियां जो है, पास्ट की मेमोरीज जो है, या पास्ट में जो कुछ हुआ है उसको बिंदी कैसे लगाए, यह चिंतन का विषय है। मुरली में तो बाबा ने कह दिया बिंदी लगाओ, पर कैसे लगाओ ये तो नहीं बताया, वो हमें सोचना है अब कैसे लगाना है। यही चिंतन है, क्या हम करें कि पास्ट का को बिंदी लगा दे। बोलिए क्या उत्तर है। ड्रामा के पॉइंट्स को याद करना। कल परसों भी यहां किसी क्लास में, शायद कुमारों की या कुमारियों की क्लास में कहा था, क्या करना है, ड्रामा की सारी पॉइंट्स को 24 घंटे में एक बार याद करना है, सारी पॉइंट्स को। जैसे ड्रामा बना बनाया है अपने ही मन में याद करना, ड्रामा कल्याणकारी है, इस ड्रामा में अकल्याण हो ही नहीं सकता, अकल्याण के पर्दे के पीछे कल्याण छिपा हुआ है, जो भी हो रहा है सब में कल्याण है। जैसे एक उदाहरण है यज्ञ का, कि एक माता थी वो इतना ब्रह्मा बाबा के आके पास आके इतना रोती थी, बाबा मेरे जीवन में ऐसा क्यों हुआ। क्या हुआ था, 1947 भारत पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ था, तब उसके जीवन में यह प्रसंग हुआ था, उधर ही सिंध हैदराबाद या उस बाउंड्री में भारत पाकिस्तान की। वो माता जो थी उसके दो बच्चे थे, और मुसलमानों ने उसके घर को आग लगा दी, इतनी भीषण आग थी वो, और उसे बचना था तो उसने क्या कर दिया, अपने दो बच्चे थे छोटे छोटे, उन दोनों बच्चों को नीचे रखा और उसके ऊपर वो खड़ी हो गई। वो दोनों बच्चे आग में झुलस कर मर गए, और फिर लोगों ने उसे बचा लिया और उसको बाहर खींच लिया। उसके बाद वो ज्ञान में आई, इस दुख के बाद ही ज्ञान में आई, परंतु ज्ञान में आने के बाद एक दुख था कि मैंने अपने दोनों बच्चों को मार दिया, मार दिया। इससे कैसे वो छूटे, एक तरफ बाबा को याद कर रही है, सब कुछ कर रही है, मुरली सुनना, अमृत वेला करना, पर ये जो स्मृति है इसको फुल स्टॉप कैसे लगाया जाए। बाबा को कहती थी बाबा मैं क्या करूं, बाबा ने एक ही बात कही, अगर वो ना होता तो ये भी ना होता, अगर तुम्हारे जीवन में वो ना होता तो ये भी ना होता, उसमें भी कल्याण ही है। इसके लिए ये नहीं कहा जा सकता हमारे जीवन में ऐसा ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, जो भी हुआ अगर दूरगामी दृष्टि से देखा जाए तो सब बातों में कल्याण है, परंतु हमारी संकुचित दृष्टि से हम देख रहे हैं, इसके वजह से कल्याण नजर नहीं आता है। महाभारत के युद्ध के बाद कुंती इतनी रोती है, और रोते हुए श्री कृष्ण के पास पहुंचती है और कहती है कि ये क्या हुआ, क्या फायदा हुआ इस युद्ध से, सब मारे गए पांडवों को छोड़कर, क्या वो भी तो मेरे ही पुत्र थे, भीष्म चला गया, द्रोणाचार्य मर गए, कृपाचार्य रह गया, और बाकी सारे कौरव थे सबके सब मारे गए, जितने वरिष्ठ थे सब चले गए, ऐसा युद्ध क्या फायदा हुआ इस युद्ध का, और बहुत रोती है और विलाप करती है। कृष्ण उससे कहता है अगर तुम कहो तो सबको जिंदा कर दूं, अगर तुम कहो तो अभी के अभी सबको जिंदा कर दूं। वो कहती है यदि तुम जो मर चुके हैं उनको भी जिंदा कर सकते हो तो ये जो हुआ है तेरी ही इच्छा से हुआ है, इसलिए राजी तेरी रजा में। जो हो रहा है ये तो भक्ति की कहावत है, बाबा कहता है यहां मैं कुछ नहीं करता, सब ड्रामा अनुसार होता है, परंतु ये भाव भक्ति में था कि सब कुछ जो हो रहा है वो होई सोई जो राम रचि राखा, ये सब उसकी इच्छा से हो रहा है, ये समर्पण भाव दिखाता है। कितने सारे भक्त और कितनी महान आत्माएं अचल रही जीवन में, क्यों, क्योंकि ईश्वर पर भरोसा था, और जो हो रहा है उसकी इच्छा से हो रहा है। को करे तर्क, क्यों तर्क करते हो और क्यों अपने बंधनों को बढ़ाते हो, thy will shall be done। इसके लिए जीवन में जो भी हुआ है उसको सबसे पहले स्वीकार कर लो, ये हमारे ही हिसाब किताब थे, किसी का इसमें कोई हाथ नहीं, कोई दोषी नहीं। ड्रामा कल्याणकारी है, ड्रामा न्यायकारी है, इसमें कहीं पर भी अन्याय नहीं हो रहा है, ड्रामा विविधतापूर्ण है, ड्रामा एक्यूरेट है, ड्रामा की टिक टिक, ड्रामा जू मिसल चलता है, ड्रामा में वही हो रहा है जो होना चाहिए, ड्रामा सत्य है, ड्रामा वंडरफुल है। ड्रामा भगवान को पसंद है। एक मुरली में था, ये ड्रामा बाप को पसंद है तो तुम्हें भी पसंद आना चाहिए। बाप को हर एक्टर पसंद है तो तुम्हें भी पसंद आना चाहिए। बाप को हर एक्टर की हर एक्शन पसंद है, तुम्हें भी आनी चाहिए। ड्रामा एक्यूरेट है, ड्रामा रिपीट हो रहा है, ड्रामा में वही हो रहा है जो कल्प पहले हुआ था, 5000 वर्ष पहले हुआ था। ड्रामा बना बनाया है और एक चीज वैरायटी, मल्टी वेरिटी ड्रामा है ये, विविधतापूर्ण जो कहा। हर एक्टर का पार्ट अपना अपना है, हर एक एक्टर का भाग्य अपना अपना है, हर एक एक्टर की बीमारी अपनी अपनी है, हर एक एक्टर का भविष्य अपना अपना है, हर एक्टर का प्रारब्ध अपना 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 है, हर एक एक्टर की कमजोरी अपनी अपनी है, हर एक्टर की विशेषता अपनी अपनी है। इस ड्रामा में हर एक एक्टर कैसा है? निर्दोष। केवल निर्दोष नहीं, संपूर्ण निर्दोष। सारे झगड़े खत्म, किसी का दोष ही नहीं है तो किससे झगड़ा करे? भगवान भी ड्रामा में बंधा हुआ है। एक कपाट ना मिले दूसरे से, एक जन्म ना मिले दूसरे से, एक के फीचर्स ना मिले दूसरे से, ऐसा ये ड्रामा है। इस ड्रामा को एक बार साक्षी होके देखना तो उसका जो इतना प्रभाव, हम उसके अंदर इन्वॉल्व हो गए, हम उससे थोड़ा बाहर निकले और देखे, अपने आप को भी देखे कि ये मैं हूं, ये सेंटर, ये मैं, ये घर, ये मैं, ये ऑफिस, ये मैं। अपने पार्ट को ही साक्षी होकर देखे। जैसे भगवान जब आता है डायमंड हॉल में, देखा उसको कैसे बैठता है? ऐसे बैठता है और सारी सभा को साक्षी होकर देखता है। हम उसको बैठकर साक्षी होकर देखे कि वो साक्षी होकर कैसे देखता है। अभी बाबा आएंगे ना 15 को, तो क्या करना? जब बाबा बैठते हैं तो ये देखना कि उसको साक्षी होकर देखना, कैसे वो साक्षी होकर सबको देख रहा है, कितना प्यार है उसे सबसे। बाप को रहा नहीं जाता, बाप को बेचैनी होती है, बाप बच्चों के बिना रह नहीं सकता, बाप को खाली खाली लगता है। पर वही बाप आता है, मुरली सुनाता है, जाने का समय होता है तो कोई लेना देने नहीं किसी से। कितनी अनासक्त वृत्ति, आता है सब करता है। हम अब यहां आपके सामने बैठे और आपसे बात कर रहे हैं तो लगेगा और थोड़ी देर बैठे, और थोड़ा देर बैठे, नहीं जाए। वो आता है, बात करता है, प्रेम लुटाता है, सब कुछ देता है और निकल जाता है, जैसे कोई लेना देना ही नहीं है। और उसने तो कह दिया मैं कुछ भी नहीं करता हूं, अपने आप यहां हो रहा है सब। जो जो कर्म करेगा वैसा वैसा फल मिलेगा। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करी तो तस फल चाखा। कर्म के सिद्धांत तो उसने संसार में रख दिए हैं। तो पास्ट को बिंदी लगाने के लिए एक पॉइंट जो बताई वो है ड्रामा। और क्या करेंगे पास्ट को भुलाने के लिए या फुल स्टॉप लगाने के लिए? नथिंग न्यू, ये भी ड्रामा का ही है। जो हो रहा है उसमें कोई आश्चर्य नहीं है, कल्प पहले भी हुआ था, अब भी हो रहा है, ये ड्रामा की पॉइंट है। और लिख करना, हाँ ये एक अच्छी बात है कि जीवन में जो कुछ हुआ है एक बार अपनी जीवन कहानी पूरी लिख दो और दे दो। ये है, उसमें चाहे कितने भी जघन्य अपराध हो, बाबा ने कहा है ना लिख कर दे दो, चाहे कितने ही पाप किए हैं, पर एक बार लिख कर दे दो तो बोझ हल्का हो जाएगा। या सुना दो या लिख कर देना बहुत अच्छी बात है कि अगर कोई एक हादसा या कोई वाक्य, कोई इंसिडेंस हुआ है और जो हमें भारी हो रहा है तो लिख देना और बाबा को दे देना। एक दूसरा काम, तीसरा माफ करना, आत्माओं को माफ करना। आज सुबह भी योग का प्रयोग कराया था, आत्माओं को माफ करना और माफी मांगना, तो ये एक विधि है बिंदी लगाने की। नेक्स्ट, और अब नई चीजें करनी है कुछ। पास्ट को भुलाना है ना तो नई मेमोरीज लानी पड़ेगी। स्वयं को ज्ञान में बिजी कर देना, स्वयं को योग में बिजी कर देना, स्वयं को सेवाओं में बिजी कर देना, ये भी एक विधि है। नहीं तो पास्ट तो आते ही रहेगा, जितना हम खाली बैठे रहेंगे वो और याद आते रहेगा। इसके लिए नई आदतें, न्यूनेस, हर एक नई नयापन जीवन में हो, रचनात्मकता, क्रिएटिविटी हो, सृजनात्मकता लानी है, हर कार्य में नवीनता। और क्या करेंगे पास्ट को भुलाने के लिए? कार्मिक अकाउंट का क्या? बाबा भेजा हुआ वापिस है, जो हमने किया है वो वापस आ रहा है। और भी कुछ कर सकते हैं पास्ट को भुलाने के लिए? सबसे अच्छी विधि है जिससे पास्ट डिलीट होता है, वो है, वो तो सारी है ही, एक दूसरी बात है अशरीरी अवस्था। जितना हमारा योग गहरा होता जाएगा, अशरीरीपन का हम जितना अनुभव करेंगे, उतने ही जो पास्ट है वो डिलीट होते जाएगा। नई किरणें उसमें आनी चाहिए, परमधाम की जो स्थिति है आत्मा की, जब हम आत्मा परमधाम में है, निराकारी अवस्था में है तो यहीं बैठी हुई, पर हम सोच रहे हम वहां है, उस अवस्था में एक तो किरणें ऊपर से आ रही है और दूसरा इस शरीर से डिटैच होते ही पास्ट की जो मेमोरीज है, सबकॉन्शियस माइंड में जो दबा हुआ है, उसका असर कम कम होने लगता है। बाकी जितनी बातें सुनाई वो तो है ही, परंतु सबसे अगर शक्तिशाली कोई विधि है, योग का चार्ट इतना बढ़ा दो और उस अशरीरी अवस्था का इतना अनुभव करो कि पास्ट को स्वतः ही बिंदी लग जाएगी। अशरीरी स्थिति डिलीट कर देता है पास्ट को, ब्रेन पर जो इंप्रेशन पड़े हुए हैं वो सारे डिलीट हो सकते हैं अगर इस अवस्था को बढ़ाया जाए तो। नेक्स्ट पॉइंट, बाबा ने कहा ये ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण अर्थात अलौकिक, ये संगम युग क्या है? मजे की जीवन है, ये ब्राह्मण जीवन मजे की जीवन है। फिर संगम युग की महिमा के बारे में बाबा ने कुछ बातें कही कि वो भी अगर तुमको कोई लिखने के कहो तो तुम लिख सकते हो, एक घंटे से भी ज्यादा लिख सकते हो। फिर से बाबा ने कहा कि जमा का खाता कितना हुआ है चेक करो, तुम मुश्किल योगी हो या सहज योगी हो, सहज योगी हो तो सारा बोझ बाप को दे दो और हल्के हो जाओ, परंतु आदत से मजबूर है। और लास्ट में कहा कि ज्ञान का, नॉलेज का आईना जो है उसमें तकदीर की तस्वीर देखो, अपने आप को देखना है। जब से बाबा के बने और आज दिन तक, बाबा ने एक बात बहुत पावरफुल बात कही है कि तुम्हें 63 जन्मों के पापों को विनाश करने में, दग्ध करने में इतना समय नहीं लगता जितना ब्राह्मण बनने के बाद किए हुए पापों को दग्ध करने में लगता है। वो तो अज्ञान काल में कर दिए थे, परंतु ब्राह्मण बाबा के बन गए उसके बाद जो गलतियां की वो 1 का 100 गुना है। पहले तो 1 का 1 गुना था अज्ञान में, परंतु ज्ञान में 1 का 100 गुना है। तो शॉर्ट में ये आज की मुरली थी, अभी 1-3 मिनट का गैप लेंगे, उसके बाद ब्राह्मण जीवन की कुछ मर्यादाओं की हम यहां चर्चा करेंगे। ओम शांति।
कितना है सुंदर बेहद का ये ड्रामा, कल्याणकारी है सच में ये ड्रामा। भगवान मिल जाएंगे ये सोचा न कभी था। कितना है सुंदर बेहद का ये ड्रामा, कल्याणकारी है सच में ये ड्रामा। भगवान मिल जाएंगे ये सोचा न कभी था। कितना है सुंदर बेहद का ये ड्रामा, का एक कल्प होता 5000 बरस का, एक कल्प होता यह सृष्टि का चक्र हुबहु फिरता। सतयुग त्रेतायुग द्वापर कलयुग बीत गया, अब युग संगम है आया, कल्याणकारी है सच में ये ड्रामा। भगवान मिल जाएंगे ये सोचा न कभी था, इतना है सुंदर।
ओम शांति।
आज फिर दीदी जी का आदेश हुआ है आपको एक्सरसाइज कराने के लिए, तो सभी अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे।
निकल के सबके लगों के